नमस्कार, द प्रिंट सुप्रभात में आपका स्वागत है। मैं शिव पांडे आज पढ़ रहा हूं डीके सिंह की रिपोर्ट, जिसमें वो बता रहे हैं गुजरात चुनाव के बारे में। वो कहते हैं कि गुजरात में 2 सीटों से आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी, पर 24 में मोदी वर्सेस केजरीवाल कांग्रेस की मदद से ही संभव है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने NDTV के कार्यक्रम टाउन हॉल में कहा है कि मेरे को 24 घंटे के लिए CBI और ED दे दो, आधी से ज़्यादा भाजपा जेल में नहीं हो तो मेरे को कहना, लेकिन इसके लिए उन्हें अभी कम से कम 1.5 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले तो उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य प्रतिद्वंद्वी के रूप में उभरना पड़ेगा। 2011 के अन्ना आंदोलन के समय से केजरीवाल के साथ काम कर चुके प्रमुख लोगों से मैं और मेरे साथियों ने अगस्त 2018 में लंबी बातचीत की थी। हम केजरीवाल की विचारधारा को समझना चाहते थे, लेकिन आज तक मैं नहीं समझ पाया हूं कि उनकी विचारधारा या उनका अंतिम राजनीतिक लक्ष्य क्या है। जैसा कि हम पहले खबर दे चुके हैं, 2019 में केजरीवाल के पास प्रधानमंत्री निवास 7 लोक कल्याण मार्ग तक पहुंचने का साफ खाका तैयार था। जैसा कि उनके पूर्व कॉमरेडों ने हमें बताया था, उस अलिखित खाके के अनुसार 7 लोक कल्याण मार्ग तक का मार्च केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सत्ता पर कब्जे के साथ शुरू होना था। अगला पड़ाव 2017 के शुरू में पंजाब था, इसके बाद 2017 अंत में गुजरात और दिसंबर 2018 में राजस्थान बनने वाला था। ये चुनावी जीत केजरीवाल को 2019 के स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर तक पहुंचाने वाले थे, जहां से वे प्रधानमंत्री के रूप में देश को संबोधित करते। अगस्त 2018 में जब द प्रिंट ने इस खाके का खुलासा किया था, तब तक ये छिन्न भिन्न हो चुका था। आप राष्ट्रीय राजधानी में तो सत्ता में थी, मगर पंजाब और गुजरात में चुनाव हार चुकी थी। मोदी 2019 में भी प्रधानमंत्री के रूप में लाल किले से भाषण देने के लिए तैयार थे। अब 2022 में आ जाइए, केजरीवाल उस खाके पर फिर से नज़र डाल रहे होंगे। दिल्ली में वे मजबूती से जमे हैं, पंजाब को उन्होंने जीत लिया है, और आप अब कट्टर ईमानदार और देशभक्त पार्टी के रूप में गुजरात में जनादेश हासिल करने की कोशिश में जुटी है। गुजरात के मतदाता क्या सोच रहे हैं ये कोई नहीं समझ पा रहा है, लेकिन आपके नेता ने, जो सबसे तेज तर्रार नेताओं में शामिल हैं, उन्होंने अपेक्षाएं पाल रखी होंगी। 2017 के गुजरात चुनाव में 29 सीटों पर लड़कर कुल 29,509 वोट हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी को वहां भाजपा को हराने के लिए बहुत ऊंची छलांग लगानी होगी। 5 साल पहले भाजपा ने वहाँ 1.5 करोड़ यानी कुल 49% वोट हासिल किए थे। इसमें शक नहीं है कि आपने गुजरात चुनाव में एक हलचल पैदा कर दी है, लेकिन उस चौड़ी खाई को पाटना एक बड़ी चुनौती है। 2013 में दिल्ली में एक जन आंदोलन की लहर पर सवार होने के बावजूद आप बहुमत हासिल करने से चूक गई थी। इसके 2 साल बाद हुए चुनाव में वो किसी तरह से अपने विरोधियों को हराने में कामयाब हो गई थी। 2017 के पंजाब चुनाव में भी यही स्थिति रही। उसने हलचल तो काफ़ी पैदा की, मगर करीब 24% वोट पाकर 117 सदस्यों वाली विधानसभा में वो केवल 20 सीटें जीत पाई थी। इसके 5 साल बाद उसने पंजाब में अपने प्रतिद्वंदियों को हराया, जिसका श्रेय कांग्रेस को दिया जा सकता है। इसलिए जब गुजरात की बात आती है, तब केजरीवाल अपने भाषणों में भले ऊंचे दावे करते हों, उनकी अपेक्षाएं बहुत ऊंची नहीं होंगी। वे सबसे अच्छे नतीजों की उम्मीद तो ज़रूर कर रहे होंगे, लेकिन नतीजों में वे दूसरे या तीसरे स्थान पर ही नज़र टिकाए होंगे। दूसरी सबसे अच्छी स्थिति यह हो सकती है कि आप गुजरात में मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरे। फिर भी रास्ता आसान नहीं है। 2017 में 41% से ज़्यादा वोट हासिल करने वाली कांग्रेस मैदान में अपनी मजबूती दिखा रही है। इस महीने के शुरू में अपने गुजरात दौरे में मैंने आपके एक नेता से बात की, तो उन्होंने मुझे एक आंतरिक सर्वे के नतीजे बताए, जिसके अनुसार गुजरात में कांग्रेस को 18%, आपको 34% और भाजपा को 36% वोट मिलने वाले हैं। लेकिन इस तरह के सर्वेक्षणों को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा सकता, खासकर तब जबकि वो सर्वे चुनाव मैदान में उतरी पार्टी ने करवाया हो। लेकिन अंतिम नतीजे इन दावों और इस सर्वे से मिलते जुलते ही मिले, तो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए आप खुद को भाजपा के एकमात्र राष्ट्रीय प्रतिद्वंदी के रूप में पेश करेगी। लेकिन मोदी के मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में उभरने के लिए केजरीवाल को 2023 में कांग्रेस का सहारा लेने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इस स्थिति के बारे में चर्चा करने से पहले हम ये देखें कि आपके लिए तीसरी सबसे अच्छी स्थिति क्या हो सकती है। वो ये है कि चुनाव के बाद आप तीसरे नंबर पर आए, लेकिन इतने वोट और इतनी सीटें जीते कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा हासिल कर सके। गुजरात की राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए उसे केवल 6% से ज़्यादा वोट मिलने चाहिए और विधानसभा में 2 सीटें ही चाहिए। दिल्ली, पंजाब और गोवा में तो राज्य स्तरीय पार्टी है ही, अगर गुजरात यानी चौथे राज्य में भी वो ये दर्जा हासिल कर लेती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता मिल जाएगी। तब वो खुद को भाजपा के खिलाफ मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी के रूप में पेश कर सकती है, लेकिन केजरीवाल इसे सबसे बुरी इस स्थिति के रूप में ही देख रहे होंगे। हम फिर से दूसरी सबसे अच्छी स्थिति पर गौर करें, वो ये कि गुजरात में भाजपा के हारने के बाद भी केजरीवाल मोदी के मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में उभरते हैं। लेकिन ये तभी हो सकता है जब आपको कांग्रेस का सहारा मिले। 2023 में कोई 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इनमें से 3 त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के चुनाव अगले साल फरवरी में होंगे, जबकि कर्नाटक के चुनाव मई में होंगे। इन राज्यों में आपका शायद ही कोई वजूद है और समय इतना कम बचा है कि वो इसमें शायद ही छलांग लगा सकें, चाहे गुजरात में उसका प्रदर्शन जैसा भी रहे। बाकी 5 राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव 2023 के नवंबर दिसंबर में होंगे। फिलहाल इन 5 राज्यों में भी आपका शायद ही कोई वजूद है, उसे इसके लिए कम से कम 1 साल तैयारी करनी पड़ेगी। अगर गुजरात में इसे बड़ी बढ़त मिलती है तो वो इसके बूते इन राज्यों में अपनी स्थिति मजबूत करने की उम्मीद रख सकती है, यहीं उसे कांग्रेस के सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। तेलंगाना में भाजपा और तेलंगाना राष्ट्र समिति के बीच सीधी टक्कर होने की संभावना है, बशर्ते कांग्रेस पीछे से उभर कर मुकाबले को त्रिकोणीय न कर दे। इसलिए आपके लिए खास संभावना नहीं बनती, भले ही वहाँ पार्टी प्रभारी बनाए गए विधायक सोमनाथ भारती उस राज्य का बार बार दौरा कर रहे हों। बाकी 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आपकी शायद ही कोई मौजूदगी है, लेकिन 2019 में केजरीवाल ने जो खाका बनाया था उसे याद कीजिए। इस खाके के मुताबिक वे उम्मीद कर रहे थे कि नवंबर दिसंबर 2023 में राजस्थान उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अहम स्थिति में पहुंचा देगा, लेकिन वहां अशोक गहलोत और सचिन पायलट में जिस तरह की तलवारबाजी चल रही है उसके चलते कांग्रेस आलाकमान अलग ही दिशा में देख रहा है। वैसे केजरीवाल ये उम्मीद कर सकते हैं कि कांग्रेस ने जो प्रयोग पंजाब में किया उसे इस मरुप्रदेश में भी दोहरा सकती है, और राजस्थान ने लोकसभा चुनाव से चंद महीने पहले कोई चमत्कार कर दिया तो ये लाल किले से देश को संबोधित करने की दिल्ली के मुख्यमंत्री की जो आकांक्षा है उसे मजबूती मिल सकती है। वे जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार के कदमों पर ज़रूर नज़र रख रहे होंगे। आप उस केंद्र शासित प्रदेश में अपना संगठन खड़ा करने की कोशिश करती रही है। वैसे जम्मू कश्मीर को लेकर अपनी योजनाओं को वो गुप्त ही रखे हुए हैं, लेकिन वहाँ वो जो तैयारियाँ कर रही है उनसे लगता है कि अगर केंद्र ने वहाँ अगले साल कभी चुनाव कराने का फैसला किया तो वो अपने राजनीतिक विरोधियों को आश्चर्य में डाल सकती है। सुनने के लिए धन्यवाद। हम कल फिर हाजिर होंगे सुप्रभात के एक नए अंक के साथ। नमस्कार।